पश्यन्त्य चिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्
शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्य भीक्ष्णशः
शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्य भीक्ष्णशः
स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः
स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः
त एव पश्यन्त्य चिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्
भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्
शृण्वन्ति
गायन्ति गृणन्त्य भीक्ष्णशः
स्मरन्ति नन्दन्ति
तवेहितं जनाः एव पश्यन्त्य चिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्
अब हम इसका हर एक शब्द का अनुवाद पढ़ेंगे, इसका ध्यान से सुनिए। शृण्वन्ति सुनते हैं, गायन्ति कीर्तन करते हैं, गृणन्ति ग्रहण करते हैं, अभीक्ष्णशः निरंतर, स्मरन्ति स्मरण करते हैं, नन्दन्ति हर्षित होते हैं, तव तुम्हारे इहितम कार्यकलापों को जनाः लोग, त एव निश्चय ही वे पश्यन्ति देख सकते हैं, अचिरेण शीघ्र ही तावकम आपका भव प्रवाह पुनर्जन्म की धारा, उपरम उपरमम बंद होना रोकना, पद अंबुजम चरण कमल। अनुवाद, हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मरण के प्रवाह को रोकने वाला है। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के इस सुंदर श्लोक में कुंती महारानी जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से वापस द्वारका की ओर जा रहे थे, ये वो समय है जब महाभारत युद्ध हो चुका था, कौरव हार चुके थे, अब कोई बचा नहीं था। महाराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडवों ने पूरे विश्व का राज्य को धारण कर लिया था। उस समय ये सब होने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मैं तो द्वारका चल रहा हूं। और तब जैसे वो जा रहे थे, कुंती महारानी सारे पांडवों के साथ आके उन्हें रोकती हैं। और उस समय बड़े सुंदर श्लोकों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का ना ही वो गुण कर रही है, पर खास करके इन कई कुछ श्लोकों में भगवान के इस भौतिक संसार में अवतरण का कारण बता रही है। भगवान इस भौतिक संसार में क्यों आना चाहिए, क्या जरूरी है उनको आने का, इसका कारण वो बता रही है। कहती है कि हे प्रभु, कुछ लोग कहते हैं कि आपका अवतरण इसलिए हुआ है क्योंकि जो बड़े धार्मिक राजाएं हैं उनका गुणगान करने के लिए, जो धर्म के आधार पर आपके बताए धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम योगी, धर्म आपने स्थापन किया है और उसका जो पालन करते हैं, ऐसे धार्मिक राजाओं का गुणगान करने के लिए आप अवतरित होते हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, देवकी और वसुदेव ने बड़ी तीव्रता से भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना किया था। हम जानते हैं कि देवकी और वसुदेव अपने पिछले जन्मों में वो सुतपा और प्रश्नी, सुतपा नाम के प्रजापति और उनकी पत्नी प्रश्नी थे। प्रजापति प्रजा सृष्टि करने से पहले वे 10,000 दिव्य सालों तक, देवताओं के सालों तक वे सूखे पत्ते खाकर बहुत बड़ी तपस्या किए थे। तब भगवान उनके सामने प्रकट हुए और पूछे क्या चाहिए आपको, तो कहने लगे कि प्रभु आप ही जैसा एक मुझे हमें पुत्र चाहिए। तो भगवान कहने लगे मेरे समान तो कोई है ही नहीं। असमूर्ध्व भगवान का दूसरा नाम है, असम अऊर्ध्व, उनके समान और उनके परे कोई नहीं है। मतलब परतरम न अन्य किंचित अस्ति धनंजय। तो भगवान कहने लगे मेरे समान तो कोई है नहीं, तो मुझे ही आना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं 3 बार आपके गर्भ से जन्म लूंगा। हालांकि भगवान को किसी गर्भ का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है, चाहे तो नरसिंह भगवान खंभे से आ सकते हैं, वराहदेव भगवान जी ब्रह्मा जी के नाक से आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हो। पर भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, वात्सल्य भाव में सेवा स्वीकार करने के लिए वो तो कहने लगे कि मैं 3 बार प्रकट होऊंगा। तो सुतपा और प्रश्नी के द्वारा प्रश्नी गर्भ के रूप में, दूसरी बार कल हमने वामन द्वादशी उत्सव मनाया तो वामन देव के रूप में, उपेंद्र के रूप में कश्यप और अदिति के गर्भ में, कश्यप और अदिति के द्वारा अदिति के गर्भ में, और अब वसुदेव और देव के द्वारा कृष्ण के रूप। तो इस तरह से कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने प्रार्थना की थी और उनकी प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए आप आए, ये कुछ लोगों का कहना है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, असली कारण भगवान के आने का यह था कि पृथ्वी माता का बोझ बहुत बढ़ गया था, जो तथाकथित क्षत्रिय लोगों से, क्षत्रिय का मतलब है क्षति त्रायते, जो भगवान लोगों को क्षति, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होने से जो बाधा करता है उन लोगों को रोकते हैं, ऐसे धार्मिक राजा जब नहीं रहते और तथाकथित राजा जो लोगों का पूरा फायदा उठाते हैं, लोगों से एक्सप्लॉयटेशन, व्हाट इज द वर्ड फॉर एक्सप्लॉयटेशन, हाँ शोषण करने के बजाय उनका पोषण करने के बजाय उनका हाँ शोषण कर देते, ऐसे राजा जब बढ़ गए थे तो पृथ्वी माता का बोझ बढ़ गया। जैसे कोई नाव में बोझ बढ़ जाता तो डूबने लगता है। तो इस समय पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी जैसे कोई बड़ा प्रॉब्लम हो तो भाई छोटा मोटा प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, पर ये मेरे से भी नहीं होगा तो मेरे बॉस के पास चलेंगे। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने जब आपके अवतरण होने का प्रार्थना किया इसलिए आप प्रकट हुए। पर कुछ लोग कहते कि नहीं नहीं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम योगी, साधुओं की रक्षा, दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं श्रवण कीर्तन का जो युग धर्म है उसे स्थापन करने के लिए आप प्रकट हुए। इस तरह से अलग अलग लोग आपके जन्म का और आपके अवतरण का अलग अलग कारण देते हैं, और ये सब कारण बतलाने के बाद कुंती महारानी उसके निष्कर्ष में ये बड़े सुंदर श्लोक जिसको हमें हृदय में लिख लेना चाहिए, जैसे पत्थर में लिख लेना चाहिए, मिटेगा नहीं, बड़े सुंदर से उसका निष्कर्ष क्यों भगवान यहां अवतरित होते हैं। आज हम जन्माष्टमी मनाए, ये जन्माष्टमी 3 सितंबर को ही हो गया पर आज हम मना रहे हैं, पर ऐसी बात नहीं है, जन्माष्टमी हर रोज हो सकता है, भगवान सिर्फ 5000 साल पहले जन्म हुए ऐसी बात नहीं है। आज भी अगर बड़ी तीव्रता से हम उनको पुकारेंगे तो हमारे हृदय में जन्म ले सकते हैं, बैठे हुए हैं पर हम उनको देख नहीं रहे। तो ये जन्माष्टमी कभी भी मनाया जा सकता है। जब भक्त लोग एकत्रित होते तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद भक्ता नाहम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयानि वा, मैं योगियों के हृदय में नहीं हूं, मैं वैकुंठ में नहीं हूं, तो फिर कहां मौजूद हूं मैं, कहां प्रकट होता हूं। यत्र गायन्ति मद भक्ता, जब बड़े प्रामाणिक भक्त और कोई इच्छा को अलग रखकर तीव्रता से मुझे पुकारते हैं और मेरा गुणगान करते हैं, वहां मैं प्रकट हूं। इसका मतलब क्या, वैकुंठ में नहीं है, योगियों के हृदय में नहीं है, हैं पर वहां उनका अनुभूति नहीं किया जा सकता है। पर जहां भक्त लोग एकत्रित होकर बड़ी तीव्रता से भगवान का गुणगान करते हैं वहां भगवान की मौजूदगी का ज्यादा महसूस किया जा सकता है। तो ये बता रही है कि क्यों यहां इस श्लोक में कुंती महारानी कह रही है कि आपके अवतरण होने का मूल कारण इस श्लोक में बता रही है। क्या कहती है, श्रृण्वंती सुनते हैं, गायंती गाते हैं, गृणंती ग्रहण करते हैं, अभिक्ष्णशः, अभिक्ष्णशः मतलब निरंतर 24 घंटे, स्मरंती जो आपका स्मरण करते हैं, नंदंती, नंदंती मतलब दूसरों को श्रवण कीर्तन और स्मरण करते हुए देखकर आनंद लेते हैं, या आप खुद श्रवण गायन स्मरण करते हैं निरंतर, या कोई और व्यक्ति जो श्रवण गायन और स्मरण कर रहा है उसको देखकर आनंद लेते हैं, तव इहितम जनाः, वो लोग तव इहितम, इहितम मतलब आपके सुंदर कार्यकलाप, जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान के कार्यकलाप हमारे जैसे नहीं है, वो बड़े दिव्य हैं। तो ऐसे दिव्य आपके कार्य कलापों का जो श्रवण कीर्तन और स्मरण करते हैं निरंतर, या जो श्रवण कीर्तन और स्मरण निरंतर करते हैं उनको देखकर कम से कम आनंद तो लेते हैं, ईर्ष्या नहीं करते क्यों चिल्ला रहे हो सुबह शाम तक, ऐसे नहीं, जो कम से कम आनंद लेते हैं कि मैं नहीं कर रहा ये लोग तो कर रहे हैं कम से कम, बहुत अच्छी बात। तो ऐसे ये दो प्रकार के लोग, तएव पश्यन्ति अचिरेण, अचिरेण मतलब बहुत जल्द ही पश्यन्ति देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं, तावकम पदाम्बुजम, आपके चरण कमलों का दर्शन कर पाते हैं। और जिस व्यक्ति ने आपके चरण कमलों का दर्शन किया तो क्या फायदा हुआ, भव प्रवाह उपरमम, उपरमम मतलब हमेशा के लिए बंद, क्या बंद, भव प्रवाह, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो चक्कर है, भव प्रवाह, प्रवाह मतलब लहर, भव सागर, इस भौतिक संसार को एक सागर की तुलना की गई है, भव सागर, क्यों सागर की तुलना की गई है, आप लोगों में से कितने लोग समुद्र में जाके तैरे हैं, हाथ उठाइए, बहुत कम लोग, इसीलिए कोई आपके चेहरों में कोई एक्सप्रेशन ज्यादा नहीं आ रहा। एक बार जाइए समुन्दर के बीच में जाइए, इधर ही बस बाहर में खड़े होकर हाथ पैर मत हिलाइए, अंदर जाइए छलांग मार दीजिए और फिर वो बोट वाले को बोलिए आप चले जाओगे, और फिर आप तैरने की कोशिश कीजिए, तब पता चलेगा आपको क्या भव सागर है। क्यों इस भौतिक संसार को सागर की तुलना की गई, थोड़े दिन पहले, थोड़े महीने पहले हम लोग जगन्नाथपुरी गए थे, और जगन्नाथपुरी में जो थोड़े बहुत अच्छा तैर लेते हैं, हाथ पैर मार लेते हैं थोड़ी बहुत, वो लोग अंदर जाने लगे और ये लहर आने लगी वहां। पहले पहले बहुत आनंद आया, समुंदर समुंदर सब कूद पड़े, और पहले लहर आया तो कोई ऊपर जाता था और जब बड़े लहर आ गई तो अंदर घुस के फिर बाहर निकलता था। बहुत आनंद ले रहे थे सब, बहुत आनंद ले रहे थे, और ऐसे लेते 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 अंदर चले गए थोड़े। फिर समुंदर एक ऐसा लहर आता था, लहर की ऐसा है कि आपको एक फुट पीछे धकेलेगा और चार फुट अंदर ले लेगा, और अगर आप निपुण तैराक नहीं है तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि अंदर आ गए। और पहले पहले तो आनंद आ रहा था, बाद में थोड़े थक गए, थकने के बाद बोलते बस अभी जाना है मुझे, नहीं फिर नहीं जाए, नहीं मिलेगा। फिर पहले पहले तो आनंद आ रहा था, फिर थोड़ा थक गए, फिर धीरे धीरे भयभीत हो गए, अरे अब पीछे मुड़ के देखते बहुत दूर है अभी, और हांफने लगे, मुंह खोले तो पानी अंदर, वो भी कैसा पानी, एकदम नमकीनी नमकीन पानी, इतना गंदा, आंख में सब पानी जाने लगा, सब जलने लगा और डूबने लगा, आदमी चिल्लाने लगा, कोई सुनने वाला ही नहीं है, वो अंदर चला गया समुद्र में, कौन, इतनी लहरों की आवाज ऐसी होती है कि कोई सुनाई नहीं देता, कितना भी चिल्ला लो, ये तो समुद्र के आसपास 200-300 मीटर के अंदर ही मर जाता है आदमी, तो फिर समुद्र के बीच में जो पड़ गया है उसकी हालत क्या होगी, कहां कहां चिल्लाएगा, अकेला बस आसमान के बीच में कहीं चिल्लाते रहे तो कौन सुनने वाला। तो भव सागर, और आज तक आप जितने बड़े भी तैराक हो, ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी चैनल क्रॉस, इंग्लिश चैनल क्रॉस किया है, वो भी क्या 25 किलोमीटर बस, और वो भी क्या नीचे से एक नेट और बाहर से एक बोट है, डूब गया तो उसको उठाने के लिए, और कोई उसको दूध पिलाता रहता है, कुछ खिलाता रहता है, ऐसा ऐसा वो के बगल में आके करते रहते, तब जाके 25 किलोमीटर तैर पाया, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, हाँ मिहिर से उसने यहां से वहां से 25 किलोमीटर। आप जितने भी बड़े तैराक क्यों ना हो, आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो समुद्र को पार कर पाया है। ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम छोटे मोटे तैराक हैं, भौतिक संसार ये लहरें की दुख आती है, कोई तकलीफ आती है, अधिदैविक अध्यात्मिक क्लेश, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, हम कहेंगे नहीं जी हम तो आराम से तैर पाएंगे, हमको बुढ़ापा नहीं आने वाला, बीमारी नहीं आने वाला, मृत्यु नहीं आने वाली, आज तक कोई कह पाया है? आप जितने भी दवाई निकाल लो, बुढ़ापा आने वाली है, बीमारी आने वाली है। हिरण्यकशिपु जैसे, उसने पूरा सब प्रकार के लाइफ इंश्योरेंस ले लिया था, सुबह नहीं मरूंगा, रात को नहीं मरूंगा, ऊपर नहीं मरूंगा, नीचे नहीं मरूंगा, पानी में नहीं, जमीन में नहीं, आसमान में नहीं, अंदर में नहीं, बाहर में नहीं, और कोई बच गया, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, हे ब्रह्मा जी आपने 84 लाख योनि सृष्टि किए, किसी से भी नहीं। अब ब्रह्मा जी बोलते रहता तथास्तु तथास्तु, सब सब पॉलिसी उसने कवर कर लिया अपने आप, बस अभी मैं मरूंगा ही नहीं। तो इस तरीके से ऐसे बड़े बड़े दानव, ऐसे बड़े बड़े तैराक जो तीनों लोकों को तैर पाए थे, वो भी इस भव सागर को पार नहीं कर पाए, बहुत देर तक तैरे बेचारे, पर अंततः डूबना ही पड़ा उनको, और ये बहुत संघर्ष करना पड़ता है समुद्र में। आराम से रहेंगे डूब जाएंगे, आराम से रहने का सवाल नहीं, तैरते रहना पड़ेगा, तैरते रहना पड़ेगा। कुछ देर आनंद आता है, अगर सालों में एक बार कभी जाते हैं तैरने के लिए, 4 मिनट तैर, 4-5 मिनट तो बहुत आनंद आता है, पर अगर तैरते रहना है, तैरते रहना मार्कंडेय ऋषि के जैसे करोड़ों साल तक, तो क्या हालत होगी हमारी, बहुत थक जाएंगे। तो इस तरह से भव प्रवाह, हर एक व्यक्ति त्रस्त है इस भौतिक संसार में, कुछ ना कुछ दुख, शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले दुख, दूसरे जीवों से उत्पन्न वाले दुख, या अधिदैविक, ज्यादा गर्मी तो तकलीफ, ज्यादा ठंडी तो तकलीफ, ज्यादा बरसात तो तकलीफ, नहीं बरसात तो भी तकलीफ। भव प्रवाह उपरमम, इससे निकलने का एकमात्र तरीका है, क्या तरीका है, तैर रहे थक गए हो, अगर एक सुंदर बड़ा नाव आ जाए, वाह, और कोई उठा के नाव में डाल दे हमें, तो इस तरह से भौतिक संसार के बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग बड़े बड़े लोग तरह तरह के नाव बना रहे हैं, ये दवाई खा लो बुढ़ापा नहीं आएगा, ये टॉनिक पी लो बीमारी नहीं होगी, इस तरह से अलग अलग प्रकार के नाव दे रहे हैं हमको, चढ़ जाओ डूबो मत, पर अंततः ये नाव भी डूबने वाले हैं। आज तक किसी ने एक ऐसा नाव नहीं बनाया। 1920 में एक अंग्रेज अमेरिका में उन्होंने एक बहुत अच्छा एक ये बनाए शिप जहाज जिसका नाम था टाइटैनिक, और उन्होंने वचन दिया था जिन्होंने बनाया, बोले कभी डूबने नहीं वाला ये, कुछ कुछ भी हो जाए ये नहीं डूबने वाला। और उस समय के पूरे विश्व के जितने सारे करोड़पति थे वो लोगों ने बोला इसमें अगर मैं जाऊंगा तो मेरा नाम भी आएगा, तो मैं पहली यात्रा में, इसकी पहली यात्रा जो निकली उसमें सब करोड़पति लोग बैठे हुए थे, और इनको इतना विश्वास था, जहाज के जो नाविक थे उन्होंने इतना विश्वास था कि कभी डूब नहीं सकता, कि उन्होंने जो लाइफ बोट होता है जो डूबने पर कोई तैरते वो लाइफ बोट को सब उठा के फेंक दिया, बोले की जरूरत नहीं है क्योंकि उस जगह में भी थोड़ा घूमने फिरने में आज आराम होगा, उसे भी निकाल के फेंक दिया। और अपनी पहली यात्रा में ये नाव जो है, बड़ी जहाज जो है, एक आइसबर्ग, एक जो बर्फ की जो टुकड़े उस पे धक्का खाई और छेद हो गया, पूरा एकदम घुस गया अंदर और उसमें पानी आने लगा। पर इसमें छह अलग अलग प्रकार के कमरे थे, अगर एक कमरे में पानी घुस गया तो दूसरा पांच कमरा, तो एक स्थिति में तीन कमरे में पानी घुस गया और जहाज ऐसा हो गया, पीछे वाला भाग ऊपर और सामने वाला नीचे, फिर भी लोगों को थोड़ा भी भयभीत नहीं हुआ, बोले नहीं नहीं हमारे कप्तान है वो थोड़ा पानी निकाल देंगे उसमें हवा भर देंगे फिर से वापस आ जाएगा, किसी ने तैरने का सोचा भी नहीं। इसी तरह से आज भी हम जैसे मूर्खों को विश्वास है कि नहीं नहीं हमारे साइंटिस्ट एक दिन ऐसे दवाई बनाएंगे कि बुढ़ापा निकल जाएगा, ऐसे दवाई बनाएंगे कि मृत्यु नहीं होने वाली है, मरे हुए को भी जीवित कर देंगे टॉनिक पिला के या दवाई खिला के, अब भी लोगों को विश्वास है। आधा डूब गए हैं, 90 साल हो गया, दांत झड़ गया है, बाल गिर गया है, फिर भी बोलते नहीं नहीं अभी थोड़े दिन में हमारे साइंटिस्ट एक ऐसे संजीवनी टॉनिक पिलाएंगे कि हम फिर से नवजीवन। अरे आज तक करोड़ों सालों से किसी ने नहीं कर पाया, आप कौन से कर लोगे? तो इस तरह से अब भी हमको विश्वास है कि नहीं 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 ये अभी कभी शायद ठीक हो जाएगा, अंततः वो डूब के मर गए सब लोग, चिल्लाए भी नहीं वो, क्योंकि बोले कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा। तो भव प्रवाह, इससे आज तक कोई बच नहीं पाया, पर बचने का एकमात्र तरीका है ऐसे छोटे मोटे नाव या जहाजों का आश्रय मत लो, ऐसे आश्रय डुबाने ही वाले हैं। सिर्फ एक प्रकार का नाव है जो कभी आपको नहीं डुबाएगा और शत प्रतिशत निश्चित ही आपको पार कराएगा, वो क्या है? तावकम पदाम्बुजम, पद अंबुज, पद यानी चरण और अंबुज मतलब कमल, भगवान के चरण कमल एक ऐसे जहाज हैं जिसका अगर किसी ने आश्रय ले लिया शत प्रतिशत वो इस जहाज को, इस भव सागर को पार कर जाएगा निश्चित रूप से, चाहे जितना भी दुबला पतला क्यों ना हो, चाहे उसको आस्थमा क्यों ना हो, दो पैर चलता है थक जाता है पर भव सागर को पार कर जाएगा। कैसे? सिर्फ भगवान के चरण कमल के आश्रय से। जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लिया है, भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर एक श्लोक है भागवत में जो कहता है कि समाश्रिताये पद पल्लवम प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। ये भव सागर पद पद में विपद है, हर क्षण हमें कुछ ना कुछ तकलीफ आता है, पर समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम, पद पल्लवम प्लवम, प्लवम मतलब जहाज, कैसा जहाज? आपके चरणों के जहाज का जिस व्यक्ति ने आश्रय ले लिया है हे प्रभु, महत पदम पुण्य यशो मुरारी, कौन सी जहाज का? मुरारी, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का जो आश्रय लिया है, भवाम्बुधि, वही फिर से भव अम्बुधि भव सागर वत्स पदम, कैसा बन जाता ये वो भव सागर, करोड़ों मील वाला भव सागर जो है वो वत्स पदम, गाय के बछड़े के खुर में चुल्लू भर पानी, इतना हो जाता है बस। गाय के बछड़े में देखेंगे अगर गाय का बछड़ा अगर बरसात के दिनों में पैर रखे तो उसमें दाग पड़ता है इतना, और इतना उसमें पानी भरता है, छोटा बच्चा भी पार कर जाएगा उसको, एक मक्खी भी पार कर जाएगा। भवाम बुधि वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम, और वो कभी इस भौतिक संसार से त्रस्त नहीं होगा। हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली व्यक्ति जो इंद्र को भी हरा दिया था, पर वो डूब गया इस सागर में, पर उसका 5 वर्ष का बेटा प्रहलाद, छोटा सा नन्ना सा एकदम मुलायम उसका शरीर, 5 साल का व्यक्ति कितना होता है, अभी अपने रघुनाथ जैसा होगा, पर एकदम निडर था वो बेचारा हिरण्यकशिपु, सब प्रकार का लाइफ इंश्योरेंस करने की सोच रहा था करोड़ों साल की तपस्या से, पर प्रहलाद ने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सोचा ही नहीं, उसे विश्वास था, और हिरण्यकशिपु ने सब प्रकार से मारने को कोशिश किया प्रहलाद, सब प्रकार से, सांपों के इसमें डाल के, कुचल डाल के, हाथियों के पैर के नीचे डाल के, बिच्छुओं के बीच में डाल के, समुद्र में फेंक के, खाई में फेंक के, सभी प्रकार से भाला से मारकर, राक्षसों के हाथ सौंप कर, सब प्रकार से, कोई चिंता नहीं था उसे, क्यों, क्योंकि समाश्रिता ये पद पल्लव आपके चरण कमलों का आश्रय ले लिया था। निडर हो जाता है एकदम, हाँ तवा पश्यन्ति, तो जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लिया है वो कभी इसमें डूबेगा नहीं, संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं होगा वो। आचार्य उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार बहुत वेग से नदी बह रही है, बहुत वेग से, उसमें एक बड़ा शक्तिशाली हाथी भी पैर रखे तो एकदम बह जाएगा वो, पर उसी पानी के अंदर हम देखते हैं कि एक छोटी सी मछली जो 1.5 इंच की होगी वो भी आराम से तैर रही है, वो बह नहीं जाती, कभी उल्टा बहती है, कभी ऐसे बहती है, कभी प्रवाह के विरुद्ध बहती हो, ऐसे कैसे कि उसी नदी के प्रवाह में इतना शक्तिशाली, उसके करोड़ों गुना शक्तिशाली हाथी बह जाता है, पर ये छोटी सी मछली आराम से उल्टा सीधा कहीं भी जा बह सकती है, क्यों, क्योंकि हाथी प्रवाह के विरुद्ध जाने की कोशिश कर रहा है वो बह जाता है, पर ये जो मछली है छोटी सी ये पूर्ण रूप से उस नदी का आश्रय ले लिया उसने। इसी तरह से भगवान के ये माया शक्ति है, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया को तुम पार करने नहीं पार कर सकते, पर मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण लेता है मायामेतां तरन्ति ते, इस माया से बड़ी आसानी से पार कर जाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि कैसे, कौन कौन से व्यक्ति इस भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले सकता है। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तवे तवेव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्। सिर्फ वही लोग जो दो प्रकार के लोग, कौन, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्ष्णशः, जो निरंतर आपके नाम को श्रवण करते हैं, आपके लीलाओं का श्रवण करते हैं, जो निरंतर आपके नाम और आपकी लीलाओं का, आपके गुणों का गुणगान करते हैं, गायंती और स्मरंती, जो स्मरण करते हैं, या वो लोग जो दूसरों को ये श्रवण कीर्तन और गायन और स्मरण करते हुए देखकर आनंद लेते हैं, और यही भक्ति है। लोग कहते हैं कि भक्ति क्या है, सिर्फ अगरबत्ती घुमाना हो तो हम भी कर लेते हैं, नहीं, 24 घंटे करने वाली चीज है, 24 घंटे एक ही चीज हम कर सकते हैं, 24 घंटे अगर आप बिल्डिंग से नीचे गिर रहे हो तो उस समय अगरबत्ती घुमा नहीं सकते, 135 माले से फिसल के गिर रहे हो तो उस समय माचिस ढूंढेंगे तो अगरबत्ती कहां मिलेगा आपको, और कहां आप घुमाएंगे, तब तक घूम के नीचे आ जाएंगे। एक ही चीज है जो हमेशा 24 घंटे एक व्यक्ति कर सकता है, हरिनाम। हर नाम हर नाम हर नाम एव केवलम कलो नास्ते वनास्ते वनास्ते गतिरण्यता। किसी अवस्था में किसी स्थिति में ये एक चीज कोई भी कर सकता है, स्मरण कर सकता है भगवान के बारे में, उनका गुणगान कर सकता है, उनका नाम ले सकता है, उनके बारे में श्रवण कर सकता है। और निरंतर आप बोलेंगे प्रभु जी आपके लिए ठीक है, आप तो मंदिर में हो, आप जप कर लेते हो, अब हमारा क्या होगा, घर गृहस्थी छोड़ के हम भी हम कैसे कर पाएंगे। अर्जुन को भगवान बोलते हैं मां मनुस्मर युद्ध चल, मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो। इसका मतलब क्या हुआ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे नहीं। मां मनुस्मर युद्ध चल मतलब आप बोलेंगे ऐसे कैसे, हरे कृष्ण करते रहेंगे जब करते कि मारेंगे, आपको सुनना भी है क्योंकि जब करते वक्त ध्यान से सुनना चाहिए, और सुनते सुनते अगर ध्यान से मारेंगे जयद्रथ जैसे को कैसे मारे, भीष्म द्रोण जैसे लोगों को ऐसे हरे कृष्ण जब करते नहीं मार सकते, तो आप बोलेंगे अगर वो करेंगे तो हम लोग कैसे काम कर पाएंगे अपना घर का काम। कुछ हद तक हम कर सकते हैं, कुछ हद तक, जैसे आचार्य उदाहरण देते हैं कि जैसे कुछ चीज थोड़े समय में ऑटोमेटिक हो जाता है, गांव के औरतें एक घड़े के ऊपर दूसरे घड़े के ऊपर दूसरे घड़े रखकर जाती हो और बातचीत करते रहती है, बच्चे को उठा के कुछ भी जाते रहती हो। पहले दिन जाते हैं तो बड़े ध्यान से जाते, पूरा ध्यान उधर ही रहता है, पर धीरे 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 इतना आदत हो जाता है कि एक के ऊपर चार घड़े भी रखे पर आराम से बातचीत करते रहे, क्या हुआ उसका, क्या हुआ उसके बगल घर में, क्या हुआ, आराम से बच्चे को भी चुप रह जाए, क्यों रोता है, आराम से वो भी बैलेंस भी होता रहता है, ये भी चलता रहता है साथ में, ये हो सकता है। अभ्यास है ना, तो कौन थे वैराग्य, अभ्यास अभ्यास। अगर भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करेंगे, भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का उच्चारण नहीं करेंगे तो यही जिह्वा से और कुछ तो करना पड़ेगा। अगर भगवान का नहीं करेंगे तो किसी और का करेंगे, अगर उनका स्मरण नहीं करेंगे तो किसी और का करेंगे। तो एक चीज हुआ कि अभ्यास, और दूसरा चीज हुआ कि अर्जुन तीर चला रहा है, पर क्यों चला रहा है, पहले तो लड़ना ही नहीं चाहता था पर भगवान के कहने पर वो कर रहा है। इसी तरह से हम घर गृहस्थी चला रहे, क्यों चला रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, क्यों पैसा कमा रहे हैं, परिवार चलाने के लिए, क्यों परिवार चला रहे हैं, आनंद लेने के लिए, मौज लेने के लिए, अच्छा फिर घूमते रहो भव प्रवाह। पर हम कहेंगे कि नहीं, हम कब ऑफिस जा रहे हैं, क्यों, पैसा कमाने के लिए, क्यों पैसा कमा रहे हैं, परिवार को संभालने के लिए, क्यों परिवार को संभाल रहे हैं जी, क्योंकि भगवान कहते हैं कि गुरु न सस्यात, सुद्रो न सस्यात, पिता न सस्यात, जननी न सस्यात, दैवम न सस्यात, न पतिम न सस्यात, नमो चाहिए तत् समुपेत मृत्युम। पिता माता गुरु देवता पति ये सब कहने लायक नहीं है जब तक अपने ऊपर जो निर्भर है उनको भव प्रवाह से हमेशा के लिए बंद नहीं करेंगे। ये हमारा प्रथम कर्तव्य है, सिर्फ उनको खाना पिलाना, शादी करा देना, अच्छा एक फ्लैट, अच्छी एक गाड़ी, बस हो गया जी, हमने सब करा दिया। वो तो पशु पक्षी भी कराते हैं, वो भी अच्छा घोंसला बनाते हैं, उनकी शादी करा के बैठा देते, चलो तुमको भी दे दिया, आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्वय पुष्पित नराणा, खाना पीना सोना बच्चा पैदा करना वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, वो कौन सी बड़ी बात, हमसे ज्यादा जिम्मेदारी वो पक्षी लेते हैं। और ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी कि क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की आज्ञा है कि जो कुछ भी करे वो भगवान की सेवा के रूप में हम करें। और इस तरह से, पर ये सब करते करते मन विचलित हो जाता है, और मन को हरण करने के लिए भौतिक संसार में जो मग्न हो जाता है उसको हरण करने के लिए मनोहर लीला भगवान ने की है। ऐसे मनोहर लीला भगवान ने किया है कि जिसके श्रवण मात्र से हम उसके उनसे आकर्षित हो जाते हैं, बस यही एक कारण है, नहीं तो भगवान को आने की कोई जरूरत नहीं है रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए, बैठे बैठे जगह में वो सोचेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, महाविष्णु सांस अंदर लिए तो पूरा पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड ही घुस जाएगा, फिर रावण कुंभकर्ण का क्या कहना, उनको कोई ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए करते हैं कि सुंदर लीलाओं का सिर्फ श्रृणवंती गायंती गृणंती स्मरन्ति नन्दन्ति, अगर ये करेंगे अचिरेण तावकं पदाम्बुजं पश्यन्ति, निश्चित रूप से बहुत जल्दी भगवान आपके चरण कमलों का आश्रय लेंगे। और जो आश्रय ले लिया इस भौतिक संसार के भव प्रवाह से उपरमम मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से कुंती महारानी बड़े सुंदर से भगवान के इस अवतरण का मूल कारण बता रही है। अगर भगवान अवतरण नहीं होते तो आज हम एकत्रित होकर जन्माष्टमी कैसे बनाते? अगर भगवान का जन्म नहीं हुआ होता तो जन्माष्टमी कैसे बनाते? अगर वो आए नहीं होते तो उनका स्वरूप किसको मालूम होता? तो कैसे हम गुणगान करते? वेणुम गुणंतम अरविंद दलायताक्षम, ब्रह्मा जी गाते कैसे? अगर वो आते नहीं तो किसकी पूजा करते? हवा की पूजा करते, हम कैसे करेंगे? उनका स्वरूप नहीं होता तो किसका नाम जपते? अगर वो प्रकट नहीं होकर अपना नाम प्रकट नहीं करते, अगर वो कुछ बोलते ही नहीं तो ये भगवत गीता कैसे हम पढ़ते? अगर वो सुंदर अपने भक्तों के साथ लीला नहीं करते तो भागवतम कैसा आता? भागवतम में है क्या? भक्त और भगवान का सुंदर प्रेम रूपी आदान प्रदान लीला है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सारे चित्र जो हैं भागवतम में, हम बड़े बड़े सुंदर चित्र देखते हैं, ये सारी जो चित्र है ये भगवान के सुंदर लीलाएं हैं। भगवान के क्या बोलते हैं, भगवत धाम का, भगवत धाम के लिए खिड़की है ये सारे चित्र जो हम देखते हैं भगवान सुंदर लीला करते हुए गोपियों के साथ इत्यादि, ये डायरेक्टली भगवत धाम का एक खिड़की में जैसे हम बाहर देख रहे हैं भगवत धाम है, ये नित्य लीला है। जो भी भगवान की लीला नित्य चल रहा है, तो जब हम भगवान के बारे में, भगवान का नाम श्रवण करते हैं, भगवान के गुण के बारे में श्रवण करते हैं, भगवान की लीला के बारे में श्रवण करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं और दूसरों को सुनाते हुए हम आनंद लेते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान के चरण कमल का दर्शन करते हैं बहुत जल्द ही, और जो करता है वो बहुत सागर से पार कर जाता है। तो ये बहुत सुंदर चीज श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज हमें मिली है, और इसको फिर से देने वाले थे भक्ति विनोद ठाकुर, आज जिनका आविर्भाव दिवस है। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं प्रभुपाद जी की कृपा से, और प्रभुपाद जी को कृपा मिली भक्ति सिद्धांत सरस्वती से, उनके गुरु महाराज, और उनके गुरु थे भक्ति विनोद ठाकुर। अगर वो प्रस्तुत नहीं करते सही तरीके से कृष्ण भावना क्या है, कृष्ण कौन है, तो उस समय तीन प्रकार से भारत में ये आक्रमण हुआ था इस वैदिक संस्कृति पर। एक था अंग्रेजों का, अंग्रेजों ने निश्चित करा दिया था अपने ब्रिटिश स्कूल्स में, उनको सिखा दिए थे कि ये सब, अरे किसी के पेड़ पौधों की पूजा, इसकी पूजा, उसकी पत्थर की पूजा, ये सब एकदम नीच, ऐसे बुद्धू लोगों का और कुछ काम नहीं, उन लोगों का मूर्ख लोगों का है ये सब, और ऐसे उन्होंने सिखा दिया था। तो उन लोगों ने एकदम अच्छा काम कर दिया था तथाकथित विद्या के नाम पे, और उस समय के पढ़े लिखे लोग वो लोग भी धीरे धीरे उससे हो गए थे और वैदिक संस्कृति को पूरा त्याग दिए थे, और जो तथाकथित मामूली लोग थे वो लोग ये जो तथाकथित चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी सहजीय लोग, कोई बहुत सारे लोगों के पत्नियों के साथ नाचता और बोलता मैं ही कृष्ण हूं, मैं महाविष्णु हूं, मेरी शरण आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो इस तरह से ऐसे लोग थे, तो मामूली लोग ऐसे अति सहजी लोगों के चंगुल में आ गए थे, और बुद्धिमान लोग अंग्रेजों के चंगुल में, उस प्रकार के मायावादियों के चंगुल में, या अंग्रेजों के इंटेलेक्चुअल लोग इस तरह में आ गए थे, और वैदिक संस्कृति नष्ट हो गया था प्रायशः। उस समय श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने इसे पुनर्स्थापित किया, इसीलिए उनको सातवें गोस्वामी बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु को स्थापित किए छह गोस्वामियों ने, चैतन्य महाप्रभु की असली स्थिति को पूरे विश्व में बताया षट गोस्वामियों ने, वृंदावन को प्रकट किया षट गोस्वामियों ने, पर चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को प्रकट किया भक्ति विनोद ठाकुर ने। उन्होंने मायापुर धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान योगपीठ को प्रकट किया। उनकी कृपा से आज हम मायापुर के कृपा मायापुर जो धाम है उसकी और चैतन्य महाप्रभु की के बारे में जो सुंदर लीला है उसके बारे में श्रवण कर सकते हैं। उन्होंने इतने सुंदर पुस्तक लिखे, जिस प्रकार षड गोस्वामियों ने कृष्ण लीला का सारा प्रस्तुत किया था जो नष्ट हो गया था, फिर से भक्ति विनोद ठाकुर ने बड़े सरल अंग्रेजी, बंगाली और संस्कृत में बहुत सुंदर सुंदर मामूली से सुंदर सुंदर भजन के द्वारा, लेखन के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा उन्होंने फिर से स्थापित किया। और सबसे बड़ा योगदान था उनके स्वयं पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने उसी परंपरा को चालू रखकर 64 गौड़ी मठ पूरे भारत में स्थापित कर इस चैतन्य महाप्रभु के शिक्षण को स्थापित किए। तो इस तरह से आज उनका आविर्भाव दिवस है। उनकी अहेतु की कृपा से आज हम उनके परम नहीं उनके पोते, आध्यात्मिक पोते जो हैं ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो हमारे दादाजी हैं, हम उनके पोते हैं, तो पोते के द्वारा हमको एक खास कृपा मिली है। तो ऐसे उनके आविर्भाव तिरुभाव दिवस जब उनका हम स्मरण करते हैं, उनकी कृपा की याचना करते हैं, तब हमको भक्तों को प्रसन्न करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और भक्त कब प्रसन्न होते हैं? भक्त को प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका है कि जहां भी एकत्रित हो जाओ हरिनाम का संकीर्तन बस करेंगे। भक्त प्रसन्न होंगे, भक्त प्रसन्न होंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे तो उनके चरण कमलों का दर्शन होगा, और दर्शन हो गया तो हम भव प्रवाह से ऊपर हम हमेशा के लिए बच जाएंगे।